دادا ابھی مرلی میں بتا رہے تھے کہ سوا سو سال بھی جیتے ہیں رشیا کے سنگ, وہ بھی شوٹنگ سنگم یوگ میں ہوتا ہے. ایسے ہر جنم میں اگر زیادہ عمر جیئیں گے تو 84 جنم تو پورا ہوگا نہیں نا, پھر تو کم عمر کا بھی شوٹنگ یہی کرنا پڑتا.
مایا چھوڑے گی جو جاستی پڑھائی پڑھنے والے ہوں گے ان کے پیچھے مایا پڑے گی, یا جنہوں نے کم پڑھائی پڑھی ہے ان کے پیچھے مایا پڑتی ہے؟ جو زیادہ مہارتی بنتے ہیں ان کے پیچھے مایا بھی مہارتی بن کے آتی. تو ڈرامہ ہی ایسا بنا ہوا ہے. اور
جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ہمارا روحانی باپ ہے اور ایک جسمانی باپ ہے,
ہم نے نہیں بتایا. ہم بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ مرلی ہے,
ابھی مرلی میں بتایا.
مرلی میں مہا واکیہ ہے,
ابھی مرلی
میں وید کے باپ دو ہیں, ایک منشی شکتی کا باپ, 500-700 کروڑ جو بھی منشی ماتر ہیں سب کا باپ, اور ایک روحانی باپ, روحوں کا باپ, وہ بھی وید کا ہے.
تو الوکک باپ پھر کون ہوا؟
الوکک جو ہے وہ برہما ہے جو سوکشم شریر دھارن کرتا ہے. جو پرجا پتا ہے اس کو الوکک کہیں گے کہ لوکک کہیں گے؟ لوکک کہیں گے نا. وہ آج سے انت تک اس لوک میں پارٹ بجاتا ہے کہ سوکشم میں پارٹ بجاتا ہے؟
جسمانی پتا کو جو شریر کا پتا ہے اس کو کیا نام دے؟
وہ حد کا لوکک بات ہے.
چار لوگ ہیں,
وہ حد کا لوگ نام تو الگ الگ ہیں. نام تو ہر جنم میں الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جو حد کے باپ ہیں وہ 500-700 سارے ہی حد کے باپ ہیں. ان کو منشی سشتی کا بے حد کا باپ نہیں کہیں گے. ابراہیم بدھ کرائسٹ وہ بھی فادرس ہیں, لیکن وہ گریٹ گریٹ فادرس نہیں ہیں, صرف گریٹ فادرس ہیں. ان کے نام کے آگے ڈبل گریٹ نہیں لگایا جا سکتا.
بابا جیسے برہما نے شریر چھوڑ دیا, ان کی آتما چلی گئی سوکشم بدن میں, تو مرلی میں آتا ہے کہ برہما سو وشنو ایک سیکنڈ میں برہما سے وشنو وہ بڑھیں گے, تو وہ آتما جس کو وہ بول نہیں سکتی ہے, کسی کو بتا نہیں سکتی ہے, تو جو
بول نہیں سکتی,
ہاں بول تو سکتی نہیں, جب وہ سوکشم بدن میں ہے تو وہ بول نہیں سکے نا.
نہیں بھوت پریت آتمائیں پرویش نہیں کرتی ہیں.
میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں کہ جب وہ مانے گا کہ یہی باپ ہے جو اس طرح پہ آیا ہوا ہے, تبھی تو مدن مرلی میں آیا ہے کہ تب وہ ایک سیکنڈ میں برہما سے وشنو بن جائے گا, تو جو بچے ہیں ان کو کیسے پتا لگے گا کس دیہ میں مطلب پرویش کر کے یہ بتائے گا کہ ہاں یہی باپ ہے؟
بچوں کو کیسے پتا چلے گا کس دیہ میں پرویش کر کے پارٹ بجا رہا ہے؟
جو باقی والے مطلب بچے ہیں ان کو کیسے پتا لگے گا کہ واقعی ہی برہما نے یہ مان لیا ہے کہ یہی باپ ہے اور اسی سیکنڈ میں وہ برہما نے وشنو بنے گا؟
میں نے جو بچے ہیں وہ برہما مانے گا تبھی مانیں گے یا پہلے ہی جان لیتے ہیں؟
بچے تو جانتے ہیں.
ہاں میں نے جو سوکشم شریر دھارن نہ کرنے والے بچے ہیں, باپ کے ساتھ آل راؤنڈ پارٹ بجانے والے بچے ہیں, وہ تو پہلے ہی جان لیتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ برہما کی سول نے بھی یہ جان لیا اور مان لیا کہ آتما برہمن سے دیوتا بنی ایک سیکنڈ میں؟ وہ سیکنڈ کا کب پتا چلے گا؟ وہ سیکنڈ تو اتنا مہتوپورن سیکنڈ ہے جس کے لیے مرلی میں بولا ہے سب پرشوتم سنگم یوگ میں. پرشوتم سنگم یوگ تو ہے ہی ہے, لیکن پرشوتم ورس بھی ہے, پرشوتم ماس بھی ہے, اور پرشوتم بننے کی پرشوتم گھڑی بھی ہے, تو پتا نہیں چلے گا. پہلے ہی بتا دیا کہ پرشوتم بننے کی پرشوتم گھڑی بھی اس سنگم یوگ میں ندری ہوئی ہے, تو پرشوتتا جب ہوگی تو گھڑی نہیں ہوگی, ہوگی. صرف بچے ہی نہیں پہچانیں گے, चारों तरफ दुनिया में नंबरवार आवाज फैलती जाएगी कि बाप आ गया।
बाबा अभी जैसे बोला कि पतित पावन सीताराम, तो राम बाप आया है पतितों को पावन बनाने, तो सीता का भी तो नाम पहले,
क्योंकि जो साकार राम है वो साकार सीता के बगैर उसके साथ जब तक प्रवृत्ति न निभाए तब तक पावन नहीं बन सकता, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में रह करके पावन बनने का राजयोग सिखाते हैं या निवृत्ति मार्ग में रहकर सिखाते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग वाले पहले सीखते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले पहले सीखते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले अर्जुन ही राजयोग सीखते हैं, तो जो सीखने वाले हैं प्रवृत्ति एक से तो नहीं होती, प्रवृत्ति के लिए तो दो चाहिए, और इस दुनिया में प्रैक्टिकल में दो चाहिए, या एक हवा में हो और एक साकार शरीर से हो तो चलेगा, दोनों ही चाहिए। तो दोनों की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए, ये ज्ञान बुद्धि में पहले बैठ जाए, ज्ञान पहले बैठेगा या पवित्र देवता पहले बनेंगे? ज्ञान पहले बैठता है। जब ये पक्का पक्का ज्ञान बैठ जाए तो उनकी बुद्धि एक दूसरे में अटैच होगी या डिटैच होगी रहेगी? अटैच हो जाएगी, माने समान पुरुषार्थी जब तक नहीं होंगे तब तक सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। क्यों? सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, कोई कारण होगा? कारण यही है कि कन्याओं माताओं में धारणा शक्ति ज्यादा होती है और पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है, इसलिए मुरली में बोला पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, और कन्याएं माताएं कोई कोई होती है सुपन खापूतन, नहीं तो भारत की कन्याएं माताएं तो सब शिव शक्तियां श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है, इसलिए कन्याओं माताओं को निमित्त बनाता हूं ज्ञान देने के लिए भी। ज्ञान कलश किस पर रखता हूं? कन्याओं माताओं के ऊपर ज्ञान कलश रखता हूं, और उन्हीं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूं। इसलिए माता का नाम आगे रखना पड़े। माता को गुरु जब तक नहीं बनाया है तब तक पवित्रता के पुरुषार्थ में कोई भी माई का लाल पास नहीं हो सकता।
फिर वो नदी तो पतित पावनी हुई ना, वो नदी भी तो पतित पावनी हो गई।
हाँ, पतित पावनी नदियां नहीं होती हैं, नदियों का स्वभाव होता है ऊपर से नीचे की ओर जाना। पतित पावन तो बाप ही है, क्या उसको ज्ञानमान सरोवर कह दो, ऊंची से ऊंची स्टेज पे स्थिर रहने वाला, उसको ज्ञान सागर कह दो, बेहद का है, ज्ञान सूर्य कह दो, ऊंची से ऊंची स्टेज वाला है, बाकी वो नदी नहीं है। नदियां पानी की होती है, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि वहां दूध घी की नदियां बहती थी, कहां? सत्यगुरु। लेकिन दूध घी की नदियां होती नहीं है, ये एक मुहावरा है, यहां का मुहावरा है संगम युग का। सत्यगुरु में क्या दूध घी की नदियां होंगी? जो उन्होंने गौमुख ऊपर दिखाई दिया, वहां ऊपर गैया बैठी हुई है और उसमें से जो पानी निकलता था वो पानी नहीं था, दूध था, और दूध की धारा बह रही थी गंगा जी की, ऐसे था। कहां की यादगार भक्ति मार्ग में जो उन्होंने गौमुख ऊपर बनाई दिया है, नीचे गंगोत्री बनाई दी है, नीचे गंगा बह रही है, हरिद्वार बना दिया, ऋषिकेश बना दिया, ये कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो कन्याएं माताएं हैं जब तक संपन्न ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है संसार में और भगवान बाप संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक पानी की गंगा है क्या
पानी की
नदियों के लिए भी बोला है गंगा हो चाहे यमुना हो अगर सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी वो नहीं वो नाला है अगर एक सागर से पक्का कनेक्शन जुटा हुआ है तो नदी को नाला कहेंगे नाला नहीं कही जा सकती
बाबा भक्ति मार्ग में ऐसा एक दृष्टांत दिया हुआ है कि नारी की झाई पट अंधा होट भजंग फिर बंदे की क्या गति जो नित नारी के संग तो बाबा तो कहते स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहे पवित्र रहे तो इसका क्या भाव है उसका
इसका भाव ये है कि जो भी सन्यासी गुरु हैं
उन्होंने बना रखा है
उन्होंने अपना अनुभव रख दिया
अच्छा
क्या नारी
नारी की
नरक का द्वार
अंधा हो
जो आप बोल रहे हैं वही बात बता रहे हैं उसका ही अर्थ है उन्होंने अपना अनुभव बता दिया नारी नरक का द्वार लेकिन नरक का द्वार बनाता कौन है पुरुष ही तो बनाते हैं
सबसे बड़ा
कन्या के रूप में जन्म लेने वाली वो कन्या के अंदर ये भावना होती है वैश्याले बनाने वाले पुरुष हैं या स्त्रियां कन्या माता हैं पुरुष है
तो ये सन्यासियों का होगा
तो सन्यासियों का ये फतवा है नारी नरक का द्वार बाप कहते हैं वो नरक का द्वार कहते हो तुम उसको सर्पिणी कहते हो खुद क्या हो खुद तो सर्प हो ना बाप आते हैं बात ही दूसरी हो जाती है सन्यासी तो एक दो स्त्री के साथ रहते हैं तो छोड़ करके और क्या नाम उनके ऊपर दोष लगा करके भागते हैं कन्या माताओं के ऊपर दोष लगा करके भाग जाते हैं ना और भगवान आते हैं
तो कन्या माताओं को
तो कन्या माताओं के साथ ही रहते हैं शिव शक्तियों के साथ ही रहते हैं लेकिन ये तो नहीं कहते कि ये कन्या माताएं सर्पिणी है इनसे दूर भागो क्यों नहीं कहते क्यों खुद का अनुभव क्या है खुद का अनुभव है कि जिस तन में प्रवेश करते हैं जिस रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं इसलिए अनुभव हो ही नहीं सकता कि नारी नरक का द्वार है या पुरुष सर्प है या नारी सर्पणी है तो गुरु जैसा होगा चेले भी वैसे ही होंगे गुरु जिनके अंदले चेला सत्यानाश
बस जैसे बताया कि सतयुग में रात नहीं होगी तो चंद्रमा भी नहीं होगा तारे भी नहीं होंगे तो आखिर इतना बड़ा ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा बताते हैं साइंटिस्ट के चंद्रमा साइज में है
1/4 हिस्सा ये कलयुग में दिखाते हैं या सतयुग में भी 1/4 हिस्सा होगा अरे सतयुग में तो सारी सृष्टि ये जो पसारा है दूसरे दूसरे धर्मकंड का वो समंदर के गर्त में समा जाएगा
ये कब घटेगा ये
कब घटेगा जो विनाश होगा तो घटेगा
जैसे सीक्वेंस है ना
इनकी इनकी जो हिस्ट्री है
हाँ जी
और धर्म खंडों की
हाँ जी
वो 2500 साल की पुरानी है ना
हाँ जी
इससे ज्यादा पुरानी तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के दिमाग में आई उससे पहले पता ही नहीं था ये अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के स्मृति पटल में आया कि हाँ रेड इंडियंस वहां रहते हैं वो कोई ऐसा महाखंड है इसी तरह जो और धर्म खंड है इस्लामी धर्म खंड अफ्रीका अरब देश ये भी समुद्र के गर्त में समाये हुए थे अफगानिस्तान ईरान ये जो भी मुस्लिम खंड है वो सात समुद्र के गर्त में समय
तो फिर बाबा इसका पुनर्स्थापना कैसे होती है चंद्रमा की और तारों की सतयुग त्रेता में तो ये समाये रहते हैं
जो भी ग्रह है और जो भी उपग्रह है। जिस ग्रह के पास जो उपग्रह होगा वो ग्रह उस उपग्रह को अपनी ओर खींचता है या नहीं खींचता है?
खींचता है।
लेकिन दूसरे ग्रह भी उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं, इसलिए न वो इधर आता न उधर जाता, चारों तरफ चक्कर काटता रहता। चंद्रमा किसके चक्कर काटता है? पृथ्वी के चक्कर काटता है। क्यों चक्कर काटता है? क्योंकि पृथ्वी का ही बच्चा है चंद्रमा, कृष्ण बच्चा। नहीं समझ में आया? जो हो चंद्रमा है वो किसका बच्चा है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका बच्चा है? सीता माता का बच्चा है ना। तो जिसका बच्चा है वो उसी की गोदी के चारों चक्कर काटेगा।
देखो ना, जैसे पहले महाभारत होगी, सिविल वार होंगे, उसके बाद जो है एटॉमिक ब्लास्ट होगा
है?
उसके बाद फिर जो है अपना ये धरती में भूकंप आएंगे, नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी, तो उसके बाद जो है ये सारे
नेचुरल क्लाइमिटीज तो साथ ही साथ चलती हैं। अभी भी भूकंप आते हैं, नेचुरल क्लाइमिटीज नहीं होती? होती है।
अंतिम जो
अभी कम है और बाद में जैसे जैसे एटमिक विस्फोट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नेचुरल कैलमिटीज भी बढ़ती जाएंगी।
अभी जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक ऊपर से जो है ना बहुत बड़ा स्लैब गिरने वाला है।
साइंटिस्ट जाने क्या क्या कहते रहे, उनकी भी बातें, हम उनकी बातों पर ध्यान क्यों दें?
तो उससे जो है वो उनका कहना है कि वो भी एक एटम बम की तरह काम करेगा, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा इस धरती पर कि वो धरती को हिला के रख देगा।
तो कहने वाली बात है,
ऐसी उनकी जो है खोज चल रही है।
साइंटिस्ट की सारी बातों को कलेक्ट करो जो उन्होंने अभी तक बोली है और घोषणा की है।
दूसरी तरफ साइंस ने बोल दिया है कि हम उनको
जैसे आज के ज्योतिषी कितनी बातें बोलते हैं और उनमें से कितनी बातें सत्य निकलती है? सारी सत्य निकलती है क्या? कोई सत्य भी निकलती है और झूठ भी निकलती है।
द्वापर से ये दोबारा फिर कैसे ऊपर स्थापित हो जाएंगे इतनी हाइट पर जाकर? द्वापर से हाँ। चंद्रमा और सितारे जो हैं ये ऊपर कैसे एस्टेब्लिश हो जाएंगे?
सितारों की बात कहाँ बताई, चंद्रमा की बात बताई। सितारे थोड़े ही पृथ्वी के उपग्रह हैं। आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि सितारों की बात कर रहे हैं?
चंद्रमा की,
चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी से पैदा हुआ है। उपग्रह है माने किसका, किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। माने ये जो प्रशांत महासागर अभी दिखाई पड़ रहा है इसकी गहराई आज तक किसी ने मापी नहीं है, इतना गहरा है। ये जो इतना गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे का जो पृथ्वी खंड था वो कितना बड़ा होगा? वो पृथ्वी खंड अलग हो गया कब? जब अर्ध विनाश हुआ द्वापर के अंत में। चंद्रमा अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई। वो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, दूसरे ग्रह उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है। अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को दूसरे धर्म की आत्माएं खींचती हैं कि नहीं खींचती है? वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु, टेढ़ जाने शंका सब काहू। तो ब्रह्मा बाबा टेढ़े थे या सीधे थे? सीधे थे। मीठा स्वभाव था वो, सबको अच्छा लगता है वो, जगत माता है। बच्चे जो है वो बाप को ज्यादा पसंद करते हैं
भक्ति मार्ग में
या माँ को ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों करते हैं माँ को ज्यादा पसंद? माँ से तो वर्षा नहीं मिलता है, लाड़ प्यार ज्यादा देती है, मोहमयी ज्यादा होती है, इसलिए माँ की ओर दौड़ते हैं। हाँ जी,
भक्ति मार्ग में एक रस्म चली आ रही है कि शिवलिंग के ऊपर पानी चलाते हैं। आगे आग का फूल तो वो तो है ही, वो तो समझ लिया हमने कि भिखारी ये दान वहां करते हैं बेचते हैं, पानी क्यों चलाते हैं? यही सवाल पूछते हैं हमको।
पहले तो ये पक्का करें कि चढ़ाने वाले जो पानी को चढ़ाने वाले हैं ज्ञानी आत्माएं हैं या भक्त आत्माएं? भक्त आत्माएं। और जो भक्त आत्माएं होती हैं जो भक्त आत्माएं होती हैं वो दूसरे धर्मों से निकलती है, या जो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के सूर्यवंशी हैं वो भक्त आत्माएं होती हैं? कौन होती है? सूर्यवंशी आत्माएं तो भक्त आत्माएं नहीं कहेंगे,
भक्ति तो रावण से आती है ना।
हाँ, भक्ति रावण से आती है। तो रावण जो है वो तो इस चंद्रवंशी से लेकर के और नास्तिक वंशी जितने भी हैं वो सब रावण संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले भगत होंगे। उनको भक्ति की लिस्ट में डालेंगे या ज्ञानी की लिस्ट में डालेंगे? भक्ति की लिस्ट होगी ना उन सबकी। जो बुद्धि से ज्ञान को नहीं समझते हैं और अंधश्रद्धा युक्त अंधविश्वास के काम करते रहते हैं उनको ज्ञानी कहेंगे या भक्त कहेंगे? तो यहाँ बाबा की जो मुरली आई उस मुरली को उन दूसरे दूसरे धर्म के जो भी आधारभूत यज्ञ में पड़े हुए हैं वो समझने वाले
नहीं
है। तो अज्ञान के अंधे हुए ना, अंधश्रद्धा अंधविश्वास उनसे आता है ना, अंधश्रद्धा अंधविश्वास आता है। और राम वाली आत्मा कहां से आती है, जन्म लेती है? राम वाला जो अंतिम जन्म का व्यक्तित्व है वही तो लिंग है, उसी में तो ज्योति बिंदु वो हीरा प्रवेश करता है जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग बनाया है उस लिंग में हीरा जड़ा है, वो हीरा किसकी यादगार थी? सिर्फ ज्योति बिंदु की यादगार। और लिंग वो साकार शरीरधारी की यादगार जो अपने को निराकारी स्टेज में स्थिर करता है, निराकारी स्टेज में स्थिर करने की प्रैक्टिस करता है। पहले प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते संपूर्ण भी बन जाता है। जब संपूर्ण बन जाता है तो उसकी यादगार बन जाती है कि दुनिया चाहे कलंक की धर की कलंक लगाती रहे लेकिन उसके ऊपर कोई असर, कान होते हुए भी जैसे कान है ही नहीं, आंख होते हुए भी जैसे आंख है ही नहीं, दुर्गंध कितनी भी उड़ती रहे उसको दुर्गंध असर ही नहीं करती। तो जैसे नाक आंख कान मुंह हाथ पांव जैसे हैं ही नहीं इंद्रियां, तो लिंग रूप बनाई दिया भक्तों ने। अरे भगवान लिंग है इतना बड़ा या वास्तव में बिंदु है?
बिंदु
है, लेकिन वो बड़ा रूप को याद करते हैं। तो ये जो बड़ा रूप है वो ब्राह्मणों की दुनिया में किसने याद करना शुरू किया? अरे यज्ञ में पहले क्या याद करते थे? नहीं, वो तो ओम 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 ओम, वो भी भक्ति मार्ग की यादगार है। मुख से रटना, मुख से आवाज लगाना, वो भी भक्ति मार्ग है। लेकिन जो आग का गोला याद करते थे, लिंग रूप में याद करते थे, वो भी भक्ति मार्ग है। याद कौन करते थे? वो भक्त ही याद करते थे जिनको साक्षात्कार हुए। और फिर उन भक्तों ने जब ब्रह्मा बाबा अपने शरीर छोड़ने की स्टेज तक आए, उन भक्तों ने जो लिंग के रूप में पूजा गया राम वाला आखिरी जन्म का व्यक्तित्व, अरे उसी की तो पूजा करते हैं यादगार में। उसके ऊपर जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? अरे जो जल चढ़ाया वो दूध चढ़ाया, अमृत चढ़ाया, ज्ञान अमृत चढ़ाया या जल चढ़ाया? ज्ञान अमृत चढ़ाया। उनकी खुद की बुद्धि में वो जल बैठा? खुद की बुद्धि में ही उन्होंने नहीं समझा कि बाप कौन है। जब बाप के स्वरूप को उन्होंने खुद ही नहीं जाना तो उसका परिचय ज्ञान कहां से देंगे? उन्होंने जल चढ़ाया, वो ही भक्ति मार्ग वहां चढ़ाएंगे। अरे जल चढ़ाने की यही तो आपका प्रश्न था कि शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं ये कहां की यादगार? ये संगम की यादगार है कि राम वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जब ज्ञान में आती है तो उसके ऊपर ये जल कौन चढ़ाते हैं? ये भक्त लोग जल चढ़ाते हैं। अरे जो ज्ञान सागर संसार में बनकर के प्रत्यक्ष होने वाला है उसके ऊपर तुम क्या जल चढ़ाते हो? तुम्हारे समझाने से उसकी समझ में आ जाएगा?
बाबा बाप बोलते हैं पहले पढ़ाई, बाप बोलते हैं पहले पढ़ाई फिर लड़ाई उसके बाद फिर रजाई।
वेरी गुड।
तो उसकी मुरली क्लास जो चलती है कब तक चलेगा?
हैं?
मुरली क्लास कब तक चलेगा?
भाग जाओ तुम मुरली चलना बंद।
2018 से पहले खत्म हो जाएगा। 2018 तक चलेगा ना?
ये क्या मुरली चलना माने वाणी चलना है ना? मुरली चलना माने वाणी चलना, और वाणी जो है नहीं, वाणी जो है वो चलाना भक्तों का काम है। जब तक भक्ति है तब तक वाणी है। या ज्ञानी संपन्न बन जाएगा, संपूर्ण स्टेज वाला ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण सो देवता बन जाएगा, तो उसको वाणी चलाने की दरकार रहेगी?
नहीं।
या वाइब्रेशन से ही सारा काम करेगा? उसका वाइब्रेशन ही इतना पवित्र होगा कि जो सामने आएगा वो चेंज हो जाएगा। वाणी चलाने की दरकार नहीं होगी। अभी कितने गुरु वाणी चला रहे हैं और कितने नेता हैं, कितनी वाणी चला रहे हैं? इतनी वाणी पहले कभी किसी शासन में नहीं। चली नहीं, और पहले किसी धर्म संप्रदाय में चली नहीं, लेकिन इतनी वाणी चलाने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो। क्यों? वाणी से परे जब तक स्वयं आत्मा नहीं पहुंचेगी तब तक वानप्रस्थी नहीं कही जाएगी, और वानप्रस्थी जब तक होंगे नहीं तब तक संसार का कल्याण होगा ही नहीं।
वाणी से परे जाना ही पड़ेगा,
पड़ेगा
जरूरी
है।
बाबा जैसे कहा गया कि ज्ञान के अंधे और पवित्रता के लंगड़े, अब उनको
पवित्रता के लंगड़े, अज्ञान के अंधे,
अज्ञान के अंधे और पवित्रता के लंगड़े,
अपवित्रता के लंगड़े,
अपवित्रता से लंगड़े, तो वो भी वाइब्रेशन से ही चेंज होगा ना। जैसे सूर्यवंशी जो हैं वो चंद्रवंशी जब आएंगे
तो
सूर्यवंशी जो हैं वो पवित्रता के से ना लंगड़े हैं ना।
रुद्रमाला
वाले
के हैं,
रुद्र वाले जो है
84 जन्म लेने वाले हैं, ज्ञान सूरी के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो अभी पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? तो जब तक पुरुषार्थी है तब तक ऐसा है।
तो इसका मतलब वो जो विजयमाला वाले हैं वो पवित्रता में हमारे से आगे है ना।
देखो जन्म जन्मांतर रानियां ज्यादा पवित्र रही है या जन्म जन्मांतर हिस्ट्री में राजाएं ज्यादा पवित्र बने? रानी ज्यादा पवित्र रही, उन्हें तो रिकॉर्ड तोड़ा है पवित्रता का।
तो फिर सूर्यवंशी जो है बीज रूप आत्माएं उनको पवित्र बनाने के वो निमित्त बने,
निमित्त बनती ठीक है,
वो संकर रंग होगा, वाइब्रेशन से होगा ना।
वाइब्रेशन से होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन करने वाला, काम करने वाला जब तक प्रैक्टिकल कर्म में खुद नहीं ऐसा करके दिखाएगा तब तक दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा।
उनके आने से होगा तो, या योग के
विष्णु है, वैष्णो देवी है, वो प्रैक्टिकल पार्टी है, और ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं या शंकर के जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रैक्टिकल पार्टी नहीं कहेंगे। एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप हैं, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी जो शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, बहुत कुछ जान जाती है, जहां चाहे वहां प्रवेश करके और उस सारी बात को समझे, जल्दी ज्ञान को कैच कर लेती है, तो वो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी, ज्यादा समझदार बन जाते हैं तो ज्यादा मदद करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे या कम सेवा करेंगे?
ज्यादा सेवा,
ज्यादा सेवा करते हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी है, प्रवेश करके इंस्पिरेट करती है, उमंग उत्साह बढ़ती है, और दूसरी एडवांस की पार्टी है
प्लानिंग पार्टी,
प्लानिंग पार्टी,
प्लानिंग पार्टी।
बहुत वेतन मिलता है उनको, क्या जो इंजीनियर्स होते हैं नक्शा बनाते हैं, कोई मकान हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? इंजीनियर्स कमाते हैं, या बड़े बड़े जो कारीगर होते हैं वो कमाते हैं। तो ये प्लानिंग पार्टी है, प्लानिंग करने वाली है, बुद्धि में बहुत तीखी है, कमाई बहुत करते हैं। क्या जो प्रैक्टिकल पार्टी मजदूर हैं वो कमाई इतने नहीं करते हैं। बहुत कमाई करते हैं, इतनी कमाई करते हैं कि जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, लेकिन मजबूर है। इस बात से मजबूर है। आज भी दुनिया में देखा जाए तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा आयास हैं या जनरल पब्लिक ज्यादा आयास है? बड़े अफसरों में बहुत आयासी फैली। ये सब बातें निकलती कहां से? इनका फाउंडर कौन है? ब्राह्मणों की संगत। सारी दुनिया का बीज तो एक ही है। क्या सारी दुनिया पावन दुनिया मेरी है तो पति दुनिया मेरी नहीं है क्या? है बोला है पावन दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नर की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बीज तो सारी दुनिया का एक ही है। बात क्या चल रही थी?
प्रैक्टिकल पार्टी। और
प्रैक्टिकल पार्टी जो है वो जब निकले तब लोगों के ऊपर असर पड़े।
वो असर कैसे पड़ेगा?
जब प्रैक्टिकल पार्टी निकले इसलिए तो ऑर्डर दिया है अपने कवाणी विजयमाला का आह्वान करो। विजयमाला का आह्वान सारे वर्गों का कैसे आह्वान करेंगे?
आह्वान हम ही करेंगे ना, हम लोग ही करेंगे ना। आह्वान
एडवांस जरूरत होगी सो करेगा। जिसको जरूरत नहीं होगी वो नहीं करेगा। जिनके ऊपर मोटा छिलका चढ़ा हुआ होगा उनको पहले जरूरत पड़ेगी, या जिनके ऊपर हल्का सा छिलका चढ़ा हुआ है वो पहले आह्वान करेंगे? तो जो प्रैक्टिकल पार्टी प्रैक्टिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल स्टेज में लाएगी उसका असर दुनिया में पड़ेगा। दुनिया में ही नहीं पड़ेगा, जो रुद्रमाला के प्लानिंग पार्टी वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी उनके प्रैक्टिकल कर्म का असर पड़ेगा और परिवर्तन होगा।
बाबा जैसे कहते हैं कि इस ज्ञान को शास्त्रों से टैली करो, और शास्त्रों में ऐसा आता है कि ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग के सिर पर खड़ी है।
ये पृथ्वी कौन है चैतन्य में?
गीता माता।
अरे चैतन्य में कोई पृथ्वी है कि नहीं? कोई एक नहीं है।
वो तो चलो चैतन्य वाली तो
उसी की तो यादगार लिखी हुई है।
वो तो चैतन्य की तो हम
शास्त्रों में जो लिखा हुआ कहाँ की बात लिखी हुई? तो संगम युग में जो प्रैक्टिकल में चैतन्य में हो रहा है वही तो लिखा हुआ है।
नहीं स्थूल पृथ्वी के लिए जैसे आज
वही स्थूल पृथ्वी
आज के साइंस
आप स्थूल पृथ्वी की दुनिया की बात करेंगे या पहले सूक्ष्म में दुनिया रची जाती है?
सूक्ष्म में तो चैतन्य पृथ्वी है।
मकान बनता है तो पहले दिमाग में खाका आता है या पहले मकान सीधा बना दिया जाता है? तो सारा फाउंडेशन तो यहाँ पड़ रहा है,
क्योंकि आजकल इसकी बड़ी रिसर्च चल रही है साइंटिस्ट और सर पर
उनकी रिसर्च कामयाब नहीं होने वाली है। कोई भी चीज की रिसर्च करें तो पहले जड़ को पकड़ना चाहिए, मूल जड़ को पकड़ करके जब रिसर्च करेंगे तो सच्ची बात निकलेगी।
जड़ का हमें पता ही,
पत्तों पत्तों का रिसर्च करने से क्या निकलेगा? नाग है ना, शेष नाग है ना, क्या जो शेष नाग है, नाग विकारी को कहा जाता है? निर्विकारी को विकारी को नाग कहा जाता है। उस नाग के सर के ऊपर पृथ्वी दिखाई गई है, शेष नाग पृथ्वी को थामे हुए है, गई तो रसाता चली चली
जाएगा। तो कहा है कि बैल के सींग पर खड़ी
है, बैल है, बैल भी है वो। जो शेष नाग है वो बैल ही है,
है?
तो बैल है।
और
एक राइटियस सिंह है, एक लेफ्टिस्ट सिंह है।
अब 2008 को ज्योतिषियों ने काल का वर्ष घोषित किया है,
इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
संगम युग में, संगम युग में,
संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। और ये हिसाब बुद्धि में बैठ रहा है कि नहीं? 2008 क्यों है?
है? इसका कोई संबंध है?
क्या क्या कनेक्शन है? कैसे बुद्धि में बैठ गया?
तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का समय है,
तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, क्या?
और तीसरी को 4 साल,
और जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में वो 4 साल लगता है। तो 2004 में
बोला
रुंग का वर्ष पूरा हुआ शूटिंग का, 4 वर्ष उसमें और ऐड कर दिए तो 2008 आता है। इसके बाद जो भी पीरियड है वो वही पीरियड है।
बाबा जो भी गलती करते धर्मराज उनकी सजा दे देते, फिर द्वापरी आते हैं क्रिस्ट के जो आधार मूर्ति को काम पर चढ़ाने की सजा क्यों मिल जाती है? जो जो गलती किया होंगे वो तो धर्मराज की सजा भोग के ही जाती है आत्मा।
हाँ, क्राइस्ट को जो सूली चढ़ी है, जीसस ने सूली भोगी है, उसकी शूटिंग कहाँ किसने की है? यहाँ शूटिंग हुई है कि नहीं?
शूटिंग तो हुई लेकिन सजा तो भोग ली।
यहाँ सजा भोगे तो वहाँ सजा नहीं भोगेंगे?
वो तो बहुत सब सजा है।
बाबा एक मुरली में आया था कि जो विधर्मी और विदेशी आत्माएं हैं इनके 84 जन्म नहीं होते, तो लेकिन रुद्रपाला ने बाबा जो चुन रहा है बच्चे हर विदेशियों से नहीं चुन रहा है, तो ये फिर 84 जन्म लेने वाले होंगे?
रुद्रपाला 84 जन्म
जो बीज है, जो बीज है उसका कभी नाश होता है? बीज का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि मौसम नहीं होगा तो नहीं उगेगा, जब मौसम आएगा तो उगेगा, तब तक धरणी में पड़ा रहता है ना। जो बीज बरसात के मौसम में पैदा नहीं होते ना, अपना मौसम आता है तब पैदा होते। तो ऐसे ये बीज रूप आत्मा है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, ये थोड़े समय के लिए मर्ज और इमर्ज होकर के रह सकती है। जो और धर्मों के जिनके छिलके चढ़े हुए हैं, जिन बीजों पर मोटे मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, वो पहले पवित्र बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, या बाद में पवित्र बनेंगे? वो बाद में पवित्र बनेंगे। और जिनके ऊपर हल्का छिलका चढ़ा हुआ है वो जल्दी पवित्र बनेंगे। सूर्यवंशी पहले पवित्र बनेंगे या जो नास्तिक वंश की आत्मा है वो पहले पवित्र बनेंगे? वो पहले पवित्र। तो 2036 तक जितने भी बीज हैं वो सब पवित्र तो बनेंगे नंबर वार, लेकिन एक जैसे पवित्र नहीं बनेंगे। एक जैसे पवित्र बनेंगे? बनेंगे नंबर वार ही पवित्र बनेंगे। जिस धर्म से कनेक्टेड जो बीज होगा और जो धर्म जिस नंबर पर आने वाला होगा, लास्ट नंबर पे इस सृष्टि पे उदित होने वाला होगा, तो लास्ट में ही वो पवित्र बनेगा, तब ही उनका छिलका उतरेगा। और लास्ट में छिलका उतरेगा तो परमधाम से भी पहले जन्म के लास्ट में उतरेगा सत्ययुग में, या पहले ही कृष्ण के साथ जन्म ले लेगा? लास्ट में ही जन्म लेगा। पहले पहले जो कृष्ण के साथ होंगे वो सूर्यवंशी होंगे या कृष्ण अकेला जन्म लेगा? जरूर सूर्यवंशी होंगे, उन सूर्यवंशियों के परिवार के बीच में कृष्ण का जन्म होगा।
اس کا مطلب بابا کرشن سے پہلے بھی جنم لینے والے ہوں گے؟
جو اشٹ دیو ہے وہ کرشن سے پوروج ہے یا بعد میں آتے ہیں؟ ابھی تو بتایا نا کرشن کا جنم اپنے پریوار کے بیچ میں ہوگا،
ستیوگ کا پہلا بچہ کرشن نہیں ہوگا،
کرشن ہوگا لیکن اس سے پہلے سوریوشی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سرشتی پر
بچے بچے
ماں باپ
پیدا
کرنے بچے ہیں، بچے بنیں گے تو سوریوشی تو بچے ہوئے ہی،
ماں باپ تو پہلے
رادھا کرشن جو ہیں جو جنم لیں گے ستیوگ میں وہ سوریوشی ہوں گے یا چندروشی ہوں گے؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں،
ایک بات بتائیے ستیوگ میں جو بچے پیدا ہوں گے رادھا کرشن جیسے ان کو سوریوشی کہیں گے یا چندروشی کہیں گے؟ ارے
سوریہ
سوریوشی کہیں گے، تو ان کا جنم کس سے ہوگا؟ ان کا جنم سوریوشیوں سے ہی ہوگا یا کوئی دوسرے دھرم والوں سے ہوگا؟ ارے ان سے بھی زیادہ پاورفل کوئی آتمائیں ہیں یا نہیں رادھا کرشن جیسے بچوں سے؟
ان کے ماں باپ ہیں،
ان کے ماں باپ، ماں باپ کے ساتھ اور سنگی ساتھی ہیں یا نہیں ہیں جنم دینے والے؟
لیکن وہ سب تو ایڈلٹس ہوں گے نا، وہ سب تو ایڈلٹس ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے نا؟
جو ایڈلٹس ہوں گے وہ زیادہ پاورفل ہوں گے یا جو بچے کے روپ میں جنم لیں گے وہ زیادہ پاورفل ہوں گے؟
کرشن جن کے ساتھ کھیلے گا،
رچیتا کون ہے اور رچنا کون ہے؟ رچیتا زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا رچنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے؟ رادھا کرشن جیسے بچے جو ستیوگ میں پیدا ہوں گے وہ رچنا ہے ساری، اور ان کو جنم دینے والے جو 4.5 لاکھ ہیں وہ سب رچیتا ہے، بل الگ الگ دھرموں کے بیج ہیں، وہ سب الگ الگ دھرموں کے بیج نمبر وار آویں گے پرم دھام سے، ایسے ہی نہیں کہ ستیوگ کے آج میں ہی سب آ جائیں گے، اوپر سے آپ میں اترتی جائیں گی، برف کا وہ حصہ ہٹتا جائے گا، ان میں وہ آتمائیں پرویش کر دی جائے گی۔
اور بابا یہ دوپر جگ کے رام ہے، دوپر جگ کے رام جو
دوپر جگ کے رام،
ہاں
دوپر جگ کے رام
ریتا
کے رام، ہاں
ان کو جو برماس ملا 14 سال کا برماس دیا تھا، 14 سال کا جو برماس دیا تھا تو وہ برماس ان کی ماتریا کا دیا تھا نا،
یہ جو کیکی کی بات کر رہے ہیں ترتا یوگ میں رام کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کس نے بتائی؟
رامائن
نے بتائی گی،
رامائن کس نے لکھی؟
تلسی داس جی نے،
منشیوں نے لکھی یا بھگوان نے لکھی؟ ارے ان کو حل تو ہونا، منشیوں نے لکھی، منشی وکاری ہوتا ہے یا نرویکاری دیوتا ہوتا ہے؟ وکاری، تو وکاری جو گرنتھ رچے گا اس میں وکاری باتیں بھری ہوئی ہوں گی یا سچی بات ہوگی؟ وپریت باتیں ہوں گی، تو بات ہی نہیں ملتی، ایک طرف رامائن میں کہتے ہیں رام راجی میں سب سکھی سے کوئی دکھی نہیں تھا، پھر کہتے ہیں رام راجی میں راون بھی تھا،
دوسری بات جو ہے روپ بسنت کی، روپ بسنت کی بات بھی ہے دنت کتھا میں جو آتی ہے، تو
وہ بھی کتھائیں ہیں، وہ لکھی کس نے؟
اچھی بھی لکھی ہے بری بھی لکھی،
اچھی بھی لکھی بری بھی لکھی، لیکن لکھی کس نے؟ منشیوں نے لکھی، تو منشیوں نے جو کچھ لکھا ہے جیسے دودھ کا گھڑا بھرا ہوا ہو اس میں ایک بوند سرپ کا وش ڈال دو سارا کیا ہو جائے گا؟ وش ہو جائے، تو ایسے ہی منشیوں نے جو کچھ بھی لکھا بل سچا بھی لکھا، بابا بھی کہتے ہیں شاستروں میں نمک آٹے میں جیسے نمک ڈالا جاتا ہے سوادشت بنانے کے لیے، ایسے تھوڑی سی سچائی ہے، تو سچائی ہے یہ نہیں کہتے کہ سچائی نہیں ہے، لیکن وہ وکاری منشیوں نے وہ کتی رچنا رچی ہے شاستروں کی، اس لیے وہ رچنا ساری جھوٹی ہے، سچائی کیا ہے جو بھگوان باپ اس سمے آ کر کے بتا
رہے ہیں
وہ سچائی ہے، اور بھگوان باپ بتاتے ہیں کہ رام تریتا میں ہوتا ہی نہیں کوئی، تریتا میں کوئی لڑائی ہوتی ہی نہیں، تریتا میں رام اور راون ہوتے ہی نہیں، تریتا میں راون کہاں سے آیا؟ رام راجیہ میں راون کیسے آ جائے گا؟ کہاں کی یادگار؟
یہی پوچھا جاتا ہوں کہ جو مدرئی مائیں ہیں سنکرم میں کیسے ہے، جیسے اس کو کیا نا रूप संत को भी दिया था उस देश निकाला, तो वो भी मतलब मान दिया। जैसे कृष्ण को जन्म दिया,
ये जो कथाएं हैं कहाँ की कथाएं हैं?
ये सारे
संगम युग में ही देश निकाला मिलता है। राम वाली आत्मा को माउंट आबू से देश निकाला मिलता है कि नहीं? राम जैसी जो भी आत्माएं हैं, जो भी पांडव हैं, उनको हस्तिनापुर से निकाला मिलता है या नहीं मिलता है? ये हाथियों का गुण है, देह अभिमानी हाथी होते हैं ना, वो देह अभिमानी हाथी जो है इतने देह अभिमान से भरे हुए होते हैं, वो ये नहीं देखते कि भगवान क्या चीज है।
बाबा देशिक में हमने जैसे राम राज्य की तो बड़ी महिमा सुनी थी
है,
अब
राम राज्य की बेसिक में महिमा होती है
वहाँ तो हम
बेसिक में तो राम राज्य की कोई महिमा कहते राम फेल हो गए। राम क्या कर क्या करता है? कुछ भी नहीं।
जैसे
राम तो फेल हो गए,
जैसे सदयुग
अरे राम बनोगे क्या?
नहीं बनेगा,
कोई महिमा नहीं है। ये तो अभी जब से एडवांस निकला है ना, तो एडवांस की बातों को फॉलो कर करके उन्होंने थोड़ा ज्ञान मिक्स करना शुरू कर दिया। अब राम की महिमा करने लगे होंगे,
पहले नहीं करते।
हाँ, राम को पहले बहुत एक दृष्टि से देखते थे, क्योंकि कृष्ण के उपासक हैं वो लोग या राम के उपासक हैं? वो आत्माएं ज्यादा जन्म जन्मांतर कृष्ण वाली आत्मा के नजदीक रही है या राम वाली आत्मा के नजदीक रही है? कृष्ण वाली आत्मा के नजदीक रही, इसलिए वो तो कृष्ण की ही महिमा
करेगी। जब कभी पूछा जाता था कोई राम बनना चाहता है तो
ये पुराने पुराने जो बैठे हुए हैं सहरसा से, उनसे पूछो कि राम की वहाँ महिमा करते थे या ग्लानी करते थे? ये तो अब एडवांस में समझ में आया
राम ही असल में बाप है,
कि राम अकेला फेल नहीं होता है। ये तो शुरुआत की परीक्षाएं थी, मासिक और त्रैमासिक परीक्षाएं। राम अकेला फेल होता है कि सारे फेल होते हैं? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। तो राम पहले फेल हो गया तो ज्यादा अनुभवी बन गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो अच्छी बात हो गई। लास्ट में जो फाइनल पेपर में फेल होंगे उनको फेल कहा जाएगा,
उनको तो ठोर ही नहीं मिलेगा।
हाँ जी, राम के लिए तो कहते हैं राम राज्य, मुरली में भी बोला है, सतयुग में भी राम राज्य कहेंगे या नारायण राज्य कहेंगे?
वही मैं पूछ रहा था,
सतयुग में भी राम राज्य किसने स्थापन किया?
सतयुग के राम राज्य की हमें बहुत
महिमा है
दिखाया,
तो किसने स्थापन किया?
राम ने किया,
राम वाली आत्मा ने स्थापन किया।
तो वहाँ के जो नज़ारे होंगे जो हमें बताए गए थे बेसिक में, जहाँ हमने जो समझे थे, वो तो यहाँ आकर के बताया कि वहाँ तो प्रकृति ही दासी होगी, वहाँ ऐसे कोई नज़ारे होंगे ही नहीं जैसे सोने के महल
होंगे। सोने के महल होते हैं, ये मुहावरा है, सोने के महल। सोने के महल माने सच्चाई के संगठन रूपी महल कहो, किले कहो, जो संगम युग में जो संगठन बनेंगे आगे चल करके, कैसे संगठन होंगे? सच्ची आत्माओं के संगठन, सच्ची ईंटे होंगी,
बाबा वहां को बता,
पत्थर वाली ईंटे नहीं होंगी।
20 किलोमीटर लंबा तुम्हारा महल होगा।
अच्छा बाबा, ये संगत है, शिवद्रोही मास कहा सो नर सपने मोहनी बाबा, ये घर में राम बलि आत्मा बोला है, ये शिव का क्या?
तो ये कहा किसने रामायण में? राम भगवान ने कहा ना, और जो शिव कहा गया है वो शंकर की मूर्ति को लेकर के शिव कहा गया, ये बिंदी के लिए कहा गया, माने कोई मूर्तिमान है अगर उसका कोई द्रोह करता है तो वो मेरी उपासना करने वाला नहीं है, वो मेरा सेवक नहीं है, वो ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकता। जो साकार को ही नहीं मानेगा वो निराकार को कहां से मान लेगा? इसलिए बोला शिव द्रोही मम दास कहा, सो नर सपने हो वो ही न पावा।
सनातन देवी देवता धर्म है, इनमें यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उनके परिवार वाले को कितने दिन के शुद्ध ग्रह में रहते हैं? शोक जो मनाते हैं कितने दिन तक मनाते हैं?
कैसे आपने जान लिया कि देवी देवता सनातन धर्म वाले?
किसी ने पूछा था ना कि आप पूछना बाबा को जवाब कैसे कैसे
माने दुनिया वालों के पूछे हुए प्रश्न तुम पूछते हो यहाँ सभा में? दुनिया वालों को तो ज्ञान ही नहीं है, उनके प्रश्न पूछना न पूछने की तो बात ही पैदा नहीं होना चाहिए। बेसिक वालों ने एडवांस नॉलेज ही नहीं लिए, वो वहां बैठे बैठे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, यहाँ सामने क्यों नहीं आ रहे?
हमने तो उनको चैलेंज किया, आपसे बात करो।
वो आएंगे ही नहीं और आपको अपनी सभाओं में बुलाएंगे ही नहीं।
हमने लिख के दिया
और आप अपनी पब्लिक की सभा करेंगे और उनको बुलाएंगे तो भी उस सभा में आएंगे ही नहीं।
बाबा जैसे एडवांस में सबसे पहले जो कन्या सरेंडर हुई वही कन्या जो है कुछ देर के बाद चली गई यज्ञ से और वो लिख के देगी कि मैं श्वेच्छा से जा रही हूँ और शिव बाबा की मैं बनी रहूंगी।
शिव बाबा,
शिव बाबा
जो चली गई बीच में वो ब्रह्मा परस्त है, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा को मानने वाली है या राम वाली आत्मा को मानने वाली है? आपसे पूछे आप बताइए, वो आत्मा जो है वो कृष्ण के ऊपर उसको ज्यादा श्रद्धा है या राम वाली आत्मा के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है? कृष्ण के ऊपर। जब तक एडवांस में रही तब तक भी अंदर श्रद्धा कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर श्रद्धा रही, क्योंकि वो किस धर्म की बीज है? वो कन्या जो है जो रुद्रमाला का फाउंडेशन बनती है वो किस धर्म का बीज है? चंद्रवंश का बीज है। तो जो चंद्रवंश का बीज है वो भगवान को पूरा पहचानेगा, इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते। ये तो नहीं कहा कि मेरे साथ जो कम रहने वाले हैं वो नहीं पहचान पाते। हाँ, चाहे ज्यादा रहने वाले हो चाहे कम रहने वाले हो, उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा साथ रहने वाला साथ किसने निभाया, सबसे ज्यादा मिलन मेला किसने मनाया, किसने मनाया? अरे तुम क्यों बोलते हो, उनको तो बोलने दो, उनको हाल होने दो। जगदम्बा ने सबसे ज्यादा जगत पिता के साथ मेला मनाया। तो जिसने सबसे जास्ती संग का रंग लिया उसमें सबसे जास्ती पावर भर गई या नहीं भर गई? भर गई। वो इतनी पावर भर जाती है कि माया ब्राह्मणों का कुछ नहीं आज तक बिगाड़ सकी।
वही बिगाड़
संगठन दिन चूना रात चौगुना संगठन एडवांस वालों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन माया ने शरीर छोड़ने के बाद जब तंग आ गई माया, बोला अभी तो वाली माया थक चुकी है, तो जब हॉस्पिटलाइज होते होते थक गई बहुत ही, शरीर छोड़ने के बाद इससे हाथ मिला लिया, प्रकृति प्रकृति पति से नहीं हाथ मिला, प्रकृति से हाथ मिला लिया। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। तो वो मुखिया है, पृथ्वी पर पांचों तत्व ही विराजमान है ज्यादा से ज्यादा तादाद में, और ग्रह उपग्रहों में पांचों तत्व नहीं है क्या? पृथ्वी पर पांच तत्व हैं, इसलिए वो पृथ्वी माता जो है वो मुखिया है पांच तत्वों की, माने प्रकृति है, प्रकृति का साकार रूप है, जिसके लिए बोला प्रकृति इस समय दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी हुई है। कब दिवाली का टाइम आए और कब कीड़े मकोड़ों को साफ कर दे। तो समझ में आ गई बात कि जगत माता जो है, जगत माता है, भारत माता तो नहीं है, जगत माता है, और जगत में राक्षस संप्रदाय और दैवी संप्रदाय दोनों है या सिर्फ है? दोनों संप्रदाय, और ज्यादा संख्या किसकी है? राक्षस समुदाय की ढेर संख्या है, चंद्रवंशी से लेकर के और
नास्तिक
वर्ग तक सारे राक्षस संप्रदाय है बीज रूप में। तो इतने बच्चों के संग का रंग लेने वाली माँ किसके प्रभाव में आएगी?
ठीक
है, सूर्यवंशियों के प्रभाव में आएगी या बच्चों के प्रभाव में? आज माताओं की हालत क्या है? पति के प्रभाव में अंत तक ज्यादा रहती है या बच्चों के प्रभाव में आ जाती है? पति जाना हो तो चला जाए, कृष्ण गीता का भगवान बन के बैठता है, उन माताओं के ऊपर बाप की नहीं चलती है खसमिया, किसकी चलती है? बच्चे खसम बन के बैठ जाते हैं, हम जैसे चलाए वैसे चलो, हाँ चलेंगे। गीता का भगवान प्रश्न हो जाता है और वो यज्ञ के अंदर हुआ पड़ा। अभी गीता का भगवान कौन है? गीता की बुद्धि में भगवान कौन है? राम है भगवान या कृष्ण भगवान? कृष्ण ही भगवान है। हाँ, पहले भी कृष्ण ही भगवान था, जब एडवांस में थी तब भी, अभी भी गीता का भगवान कृष्ण है और कृष्ण की बुद्धि में भी
यही,
उसकी बुद्धि में भी गीता का भगवान मैं ही हूं। कोई प्रूफ नहीं है मुरलियों में, कोई इस बात का प्रूफ हो कि दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया, ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ है? अरे आज सारे कहने लगे, आज के सारे गुरु कहते हैं ऐसे, वो हम तो सबको भगवान मान लो, मानेंगे ऐसे कैसे मानेंगे फिर? बिना प्रूफ और प्रमाण के जो मान लेते हैं वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही नहीं। प्रूफ और प्रमाण चाहिए।
बाबा रामायण में बोला है,
इनकी बात अलोले ने, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, नहीं ये हिल रहे हैं अंदर से। अब सवाल ये है कि जगत पिता के संरक्षण में जगत माता क्यों नहीं है, क्यों छिटक के अलग हो गई?
हाँ जी, यही बात है कुछ की।
ये प्रश्न अभी आपका हल नहीं हुआ। जो जगत पिता है वो इस समय विदेशी बनकर के आया हुआ है या विदेशी है? बन करके आया हुआ है,
विदेशी है।
हाँ, विदेशी बनकर के इसलिए आया हुआ है कि सारे ही बच्चों से भगवान को संगम युग में नंबरवार मिलना जरूरी है। कोई को ज्यादा मिलना है, कोई को कम मिलना है, कोई को संपूर्ण इंद्रियों से मिलना है और कोई को कम से कम आंखों से तो देखना है। अच्छा, आंखों से नहीं देखना, कानों से सुनना तो है, अखबार में तो देखना है। माने सबको ये एहसास हो जाए, विश्वास बैठ जाए कि हमारा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। इसलिए बोलता है कि बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बन के नहीं आया हुआ है। गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पाठ बजाय रहा है? गुप्त पाठ बजाय रहा है, नहीं तो बच्चों से मिलेंगे कैसे? इस राज को जो जड़तमयी बुद्धि प्रकृति है, पृथ्वी है, वो जड़ बुद्धि है, वो समझेगी या कोई दूसरे समझेंगे? न वो समझेगी और न जड़तमयी बुद्धि वाले जो भी होंगे वो नहीं समझेंगे, न दूसरे समझेंगे वो पालन करने वाले।
बाबा,
जो प्रकृति है और जो माया है उसको शिव शक्ति कहेंगे, शिव की शक्ति कहेंगे या रावण शक्ति कहेंगे?
प्रकृति,
प्रकृति रावण की 10 चीज दिखाई जाते हैं, 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 जड़ तत्व हैं जिन्हें कहते हैं मंदा उदरी। उधर माने पेट। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद है, माने जड़ तुम्हारी बुद्धि है। वो उसकी पत्नी है, नारी होने के कारण इतना जान लिया कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी साथ किसका दिया? रावण का साथ दिया, रावण संप्रदाय का साथ दिया।
फिर भी बाबा कोई नया लोग ज्ञान सुनते हैं तो हफ्ता की संगठन में, मासिक की संगठन में, क्लास में आ सकते हैं, तो जब पहले कन्या हो, जब बीच की कन्या हो, कोई अनिच्छा पत्र, अवज्ञा पत्र लिखते हो, क्लास में क्यों नहीं आ सकते? उनको क्यों मना करना?
किसने मना किया? तुमने मना किया? बाबा ने तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं निकाले कि कोई आत्मा ज्ञान से टूट जाए, उल्टा कर्म कर ले, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, वो दोबारा क्लास में नहीं आ सकती। हाँ, बाबा के क्लास में नहीं आना। बाप तो अपने बच्चों से ही बातें करेंगे, दूसरों से बात नहीं करेंगे। जो मर गए, मर गए माने मर गए, मुर्दा हो गए,
तो दोबारा भर्ती करने,
दोबारा भर्ती करने जाओ, माफीनामा लिखो,
तब तो आ सकते, तो आ सकते
नहीं, तब बाप की क्लास में आ सकते हैं। बाकी जनरल क्लास में तो दुनिया भी आत्माएं आ सकती हैं, तो ज्ञान से जो वंचित हुई आत्माएं वो नहीं आ सकती? आ सकती है। हाँ, तुमको ये पक्का पता पड़ गया हो कि ये तो अनिष्टकारी है, दूसरे ग्रुप में चला गया है, प्रूफ मिल गया हो, ये तो विरोधी है, यहाँ आएंगे तो विष बीज भवन करेंगे, उनको बताने दो।
बाबा, बेसिक वालों को जब मान लो जैसे बहन जी कोर्स करा रहे होते हैं और बीच में उनको के ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन प्रश्नों का समाधान उस समय बहन नहीं दे सकती है, तो हम उनको कैसे कन्विंस करें कि भाई, मतलब कहने का भाव ये है कि हो सकता है कि हमारी बुद्धि में उनको सेटिस्फाई करने के लिए उस समय वो पॉइंट नहीं आया है, तो वो अगर उनके मन में ये इच्छा होती है कि हम बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे जबकि उन्होंने ये कोर्स नहीं किया होता।
बेसिक कोर्स जो है वो बेसिक कोर्स बाबा से आता है?
नहीं, जो बीके में है,
जो बीके में है,
उनको जब हम ज्ञान सुनाते हैं
बीके में है, और वो जब ज्ञान सुन रहे हैं आपसे, एडवांस ज्ञान सुन रहे हैं, एडवांस कोर्स सुन रहे हैं,
हम उनको संतुष्ट नहीं कर सके,
आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो और बड़ी बड़ी बहनें हैं।
नहीं, मान लो यहाँ कोई बहन को संतुष्ट नहीं कर सके,
ऐसा कोई नहीं होता है। यहाँ का जो 7 दिन का कोर्स किया हुआ है,
बाबा मेरा अनुभव है,
7 दिन का कोर्स करने वाले से भी वो बात नहीं कर सकते।
नहीं, वो बात आपकी ठीक है,
लेकिन कोई कोई ऐसे तीखे होते हैं।
हाँ जी,
भक्ति मार्ग वालों में भी कोई तीखे तीखे होते हैं, तो उनको बताओ कि हम हल नहीं कर पाते हैं, तो हम बड़ी बहनों से आपको मिलाएंगे।
लेकिन बाबा, कहने का भाव है कोई बहने कोर्स करते समय बीच में भाई लोग समझा सकते हैं क्या?
बहनों के बीच में भाई लोग क्यों समझाए? ये तो गलत बात है। बहने समझा रही है और भाई लोग भी कोई एडवांस के आकर के बैठ गए और वे बीच में बोल बोल कर रहे हैं, ये तो गलत बात है।
नहीं, बहन के समझाने से भी उसको जो है
नहीं समझ में आया तो आना बंद कर देगा, आप उसे दोबारा समझाइए। टीचर से स्टूडेंट ज्यादा ठीक हो सकता है? ये क्या बात हुई कि जिस जिज्ञासु को बहन नहीं समझा सकती है उसको भाई भी नहीं समझा सकता?
नहीं, उसके लिए फिर कोई आगे जैसे हम उसको कहें कि आप बाबा से पूछ सकते हो। ऐसे
बाबा तो तब उनका बाबा बनेगा, बाबा कहने के अधिकारी तो तब होंगे जब बाप के घर में जाके जन्म लेंगे। उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, उनको बाबा कहेगा? तुम किस आधार बाबा कहते हो? ब्लफ मारते हो, धोखा देते हो?
बाबा माने तो पहले तो ही
ऐसे बाबा कहने से बाबा हो जाता है? उनको पकड़ो उसी समय, तुमने कैसे बाबा कह दिया?
बाबा को तो पहले पहचाने, वो तभी तो बाबा मानेंगे, तभी तो बात होगी।
3-3 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन त्रिमूर्ति के कोर्स में समझते रहते हैं और बाबा उन्हें पहचान में ही नहीं आता।
नहीं, वो जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा भी है लेकिन उनकी जिज्ञासा नहीं तृप्त हो पाती।
उनकी शांत करने के लिए एक से एक अच्छे भाई बहने हैं, उनसे कनेक्शन करवाओ, वो समझाएंगे। और फिर एक बात और पक्की, बाबा ने कहा जो तुम्हारी कुल का होगा थोड़ा सा उसको सुनाएंगे और फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाए, खिसा चला आए, हमारा कुल का ही नहीं है, आगे चल के धोखा देगा। ऐसे के पीछे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? वो तो प्रजा वर्ग की आत्मा है, भगत बनेगी जाके
तो छोड़ देना चाहिए,
बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बात विवाद करने वाली आत्मा है,
हमारे पास चल के आते हैं और चाहते भी
लड़ाई लड़ने आते हैं, तुमको निकालने के लिए आते हैं। वो कहते हैं हमारी सुना, हम
कहना चाहते ये होता है।
अरे हमें पता लग गया त्रिमूर्ति की बात ही जिसकी बुद्धि में नहीं बैठती उनको एक दो तीन रवाना कर देना चाहिए। तुम बाप की बाप बाप को ही नहीं समझते हो तो हम आगे तुमको क्यों समझाएं।